अगली सुबह हवेली में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन सुषमा देवी के दिन की शुरुआत फिर वही कामों से हुई। हाथ में कपड़ा लिए वो ड्राइंग रूम में रखी महंगी सजावटी चीजों की डस्टिंग कर रही थीं। हर शोपीस, हर मूर्ति उनकी जिंदगी के बीते हुए समय की तरह थी, कभी चमकदार, अब बस याद बनकर रह गईं। उन्होंने एक कीमती मूर्ति उठाई, बहुत संभालकर, जैसे कोई अपनी पुरानी याद को छूता है। लेकिन तभी उनका हाथ हल्का सा कांपा और अगले ही पल ठक, मूर्ति नीचे गिर गई, टुकड़ों में बिखर गई। आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। सुषमा देवी के हाथ वहीं रुक गए, चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। हे भगवान, उन्होंने धीरे से कहा और झुककर टूटे हुए टुकड़े समेटने लगीं। तभी तेज कदमों की आवाज आई। नंदिनी और सुप्रिया दोनों भागते हुए वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने टूटी हुई मूर्ति देखी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये क्या किया आपने? नंदिनी की आवाज तेज थी और गुस्से से भरी हुई। सुप्रिया ने भी तुरंत कहा, पता है ये कितनी महंगी थी? आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। उनकी आवाजों में ताना और गुस्सा दोनों थे। सुषमा देवी घबराई हुई थीं। मैं, वो हाथ से छूट गई, उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन किसी ने उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं की। हर बार यही बहाना, नंदिनी बोली। अब नुकसान कौन भरेगा? सुप्रिया ने सिर हिलाया। इतनी उम्र हो गई है फिर भी समझ नहीं आती। उसी वक्त धानी और वरुण वहां आ गए। उन्होंने पूरा दृश्य देखा। दादी झुकी हुई, हाथ में टूटे टुकड़े और दोनों माओं की ऊंची आवाज। धानी की आंखों में गुस्सा भर गया। बस, उसने तेज आवाज में कहा। सभी चौंक गए। आप लोग दादी से ऐसे बात कर रहे हैं? उसने सीधा सवाल किया। एक मूर्ति टूट गई तो क्या हो गया? उससे ज्यादा कीमती दादी नहीं है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। वरुण भी आगे बढ़ा। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? उसने गुस्से में कहा। इस उम्र में दादी से काम करवाते हैं और ऊपर से डांटते भी हैं। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। नंदिनी का चेहरा सख्त हो गया। तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो, उसने तीखे स्वर में कहा। सुप्रिया ने भी जोड़ दिया, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। लेकिन धानी अब रुकने वाली नहीं थी। बड़े, वो हंसी, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। बड़े वो होते हैं जो अपने से छोटे का ख्याल रखते हैं, जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। आप लोगों ने तो सब कुछ दादी से छीन लिया, उसने सीधा कहा। घर, हक, इज्जत, और अब उन्हें चैन से जीने भी नहीं दे रहे। ये शब्द जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। सुजीत और अविनाश भी बाहर आ चुके थे और ये सब सुन रहे थे। सुजीत गुस्से में आगे बढ़ा और वरुण का हाथ पकड़ लिया। बहुत हो गया, चलो यहां से, उसने उसे खींचते हुए कहा। सुप्रिया ने भी धानी का हाथ पकड़ लिया। बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगी। लेकिन धानी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए मुझे, मैं सच बोल रही हूं, उसकी आवाज गूंज रही थी। वरुण भी पीछे मुड़कर देख रहा था। दादी को मत डांटो, गलती हो गई तो क्या, लेकिन उनकी आवाजों को दबा दिया गया। दोनों बच्चों को लगभग खींचते हुए उनके कमरों की तरफ ले जाया गया। ड्राइंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। फर्श पर अभी भी मूर्ति के कुछ टुकड़े पड़े थे और उनके बीच सुषमा देवी खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उन्होंने धीरे से झुककर आखिरी टुकड़ा उठाया और उसे अपनी हथेली में देखते हुए हल्के से बुदबुदाई। टूटना शायद अब आदत बन गया है। उनकी नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां से अभी अभी बच्चों को ले जाया गया था। उनकी आंखों में दर्द के साथ एक हल्की सी चमक भी थी, क्योंकि आज किसी ने उनके लिए आवाज उठाई थी, किसी ने उन्हें कीमती कहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ी हो गईं। अब उनके कदमों में वही पुरानी थकान नहीं थी, कुछ बदल रहा था। अंदर ही अंदर एक नया हौसला जन्म ले चुका था और शायद अब वक्त आ गया था कि वो सिर्फ सहे नहीं बल्कि कुछ करें, क्योंकि हर बार टूटने के बाद इंसान या तो बिखर जाता है या फिर पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। और सुषमा देवी अब दूसरी राह चुनने वाली थी। दोपहर का वक्त, हवेली में हल्की सी खामोशी थी। सुषमा देवी अपने कमरे में बैठी थीं, हाथ में वही पुराना संदूक जिसे वो बार बार खोलती और फिर बंद कर देती। तभी बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। कुछ ही पल बाद धानी अंदर आई, हाथों में कई शॉपिंग बैग्स लिए हुए। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक। दादी,
उसने दरवाजे से ही आवाज लगाई। सुषमा देवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आ गई बेटा, धानी मुस्कुराते हुए उनके पास आई और बैग्स बिस्तर पर रख दिए। आज आपके लिए कुछ लाई हूं, उसने उत्साह से कहा। सुषमा देवी थोड़ा हैरान हुई। मेरे लिए क्या जरूरत थी बेटा? लेकिन धानी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। उसने जल्दी जल्दी बैग खोला और अंदर से एक खूबसूरत साड़ी निकाली, हल्की गुलाबी रंग की जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। सादगी और शान का खूबसूरत मेल। ये देखिए, उसने साड़ी फैलाते हुए कहा, आप पर बहुत सुंदर लगेगी। सुषमा देवी कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। उनकी आंखों में चमक आ गई और होठ हल्के से कांप गए। इतनी सुंदर, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे लिए? धानी ने प्यार से उनका हाथ पकड़ा। हाँ दाबी, आपके लिए, क्योंकि आप इसके लायक हैं। ये सुनते ही सुषमा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने साड़ी को अपने सीने से लगा लिया जैसे कोई अनमोल चीज हो। बहुत दिन बाद, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किसी ने मेरे लिए कुछ खरीदा है। उनकी आवाज में सुकून भी था और दर्द भी। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। सुप्रिया और नंदिनी दोनों कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुईं। उनकी नजर सीधे साड़ी पर गई, फिर धानी पर। अच्छा, शॉपिंग करके आई हो? सुप्रिया ने हल्की तंज में कहा। धानी ने सीधा जवाब दिया, हाँ, दादी के लिए साड़ी लाई हूं। उसने साड़ी की तरफ इशारा किया। सुप्रिया का चेहरा थोड़ा उतर गया और नंदिनी ने भौहें चढ़ा ली। बस दादी के लिए? सुप्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। धानी ने बिना झिझक कहा, हाँ बस दादी के लिए। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। सुप्रिया के चेहरे पर साफ ना खुशी आ गई। वाह, वो हल्का सा हंसी, हम लोग तो जैसे कोई है ही नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं? उसकी बात में ताना साफ था। धानी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप लोगों को किसी चीज की कमी है क्या? या आपने कभी दादी के लिए कुछ लाया? उसके शब्द सीधे लगे। नंदिनी तुरंत बोली, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी, ये सब हॉस्टल का असर है। लेकिन धानी पीछे नहीं हटी, अगर सच बोलना गलत है तो हाँ, ये असर है। वरुण भी वहीं आ गया था और चुपचाप सब सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, दादी को कुछ मिलता नहीं तो हमने सोचा हम दे दें। उसकी मासूम आवाज में सच्चाई थी। सुषमा देवी तुरंत बीच में आई। बस करो बच्चों, उन्होंने प्यार से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग हो वही काफी है। लेकिन इस बार उनकी बात में पहले जैसी मजबूरी नहीं थी, एक हल्की सी खुशी थी। उन्होंने साड़ी को फिर से देखा और धीरे से कहा, आज पहनूंगी इसे। धानी मुस्कुरा दी, अभी पहनिए, मैं देखना चाहती हूं। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन सुप्रिया और नंदिनी के चेहरे अब भी खिंचे हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी और असहजता भी। उन्हें शायद पहली बार महसूस हो रहा था कि जो इज्जत और प्यार उन्होंने नजरअंदाज किया था, वही अब उनके हाथ से खिसल रहा था। सुषमा देवी धीरे धीरे उठी और साड़ी लेकर बदलने चली गई। पीछे धानी और वरुण खड़े थे, चेहरे पर संतोष के साथ। और कमरे के कोने में खामोशी से एक बदलाव जन्म ले चुका था, जो अब रुकने वाला नहीं था।